یوحنا کی انجیل باب ایک. ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی, اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. ایک آدمی یوحنا نام آ موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا. یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلے سے ایمان لائیں. وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا, حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا. وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا. وہ اپنے گھر میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا, لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا, یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. وہ نہ خون سے, نہ جسم کی خواہش سے, نہ انسان کے ارادے سے, بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا, اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا ہے,
یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا.
کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا, یعنی فضل پر فضل, اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی. خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا, اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا. اور یوحنا کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلیم سے کاہن اور لاوی یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ
تو کون ہے,
تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا بلکہ اقرار کیا,
میں تو مسیح نہیں ہوں.
انہوں نے اس سے پوچھا,
پھر کون ہے, کیا تو ایلیا ہے؟
اس نے کہا,
میں نہیں ہوں.
کیا تو وہ نبی ہے؟
اس نے جواب دیا کہ
نہیں.
پس انہوں نے اس سے کہا,
پھر تو ہے کون تاکہ ہم اپنے بھیجنے والوں کو جواب دیں, تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے؟
اس نے کہا,
میں جیسا یسایا نبی نے کہا ہے, بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خداوند کی راہ کو سیدھا کرو.
یہ فریسیوں کی طرف سے بھیجے گئے تھے. انہوں نے اس سے یہ سوال کیا کہ
اگر تو نہ مسیح ہے, نہ ایلیا, نہ وہ نبی, تو پھر بپتسمہ کیوں دیتا ہے؟
یوحنا نے جواب میں ان سے کہا کہ
میں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں, تمہارے درمیان ایک شخص کھڑا ہے جسے تم نہیں جانتے, یعنی میرے بعد کا آنے والا, جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں.
یہ باتیں یردن کے پار بیتنیا میں واقع ہوئی جہاں یوحنا بپتسمہ دیتا تھا. دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا کہ
دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے کہا تھا, ایک شخص میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا ہے کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا اور میں اسے پہچانتا نہ تھا, مگر اس لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوا آیا کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے.
اور یوحنا نے یہ گواہی دی,
میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا ہے اور وہ اس پر ٹھہر گیا. میں تو اسے پہچانتا نہ تھا مگر جس نے مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کو بھیجا ہے اسی نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے. چنانچہ میں نے دیکھا اور گواہی دی ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے.
دوسرے دن پھر یوحنا اور اس کے شاگردوں میں سے دو شخص کھڑے تھے. اس نے یسوع پر جو جا رہا تھا نگاہ کر کے کہا,
دیکھو یہ خدا کا برہ ہے.
وہ دونوں شاگرد اس کو یہ کہتے سن کر یسوع کے پیچھے ہو لیے. یسوع نے پھر کر اور انہیں پیچھے آتے دیکھ کر ان سے کہا،
تم کیا ڈھونڈتے ہو؟
انہوں نے اس سے کہا،
اے ربی،
یعنی اے استاد،
تو کہاں رہتا ہے؟
اس نے ان سے کہا،
چلو دیکھ لو گے۔
پس انہوں نے آ کر اس کے رہنے کی جگہ دیکھی اور اس روز اس کے ساتھ رہے، اور یہ دسویں گھنٹے کے قریب تھا۔ ان دونوں میں سے جو یوحنا کی بات سن کر یسو کے پیچھے ہو لیے تھے، ایک شمعون پترس کا بھائی اندریاس تھا۔ اس نے پہلے اپنے سگے بھائی شمعون سے مل کر اس سے کہا،
ہم کو کرسٹس یعنی مسیح مل گیا۔
وہ اسے یسو کے پاس لایا۔ یسو نے اس پر نگاہ کر کے کہا،
تو یوحنا کا بیٹا شمعون ہے، تو کیفا یعنی پترس کہلائے گا۔
دوسرے دن یسو نے گلیل میں جانا چاہا اور فلپس سے مل کر کہا،
میرے پیچھے ہو لے۔
فلپس اندریاس اور پترس کے شہر بیتسیدا کا باشندہ تھا۔ فلپس نے نتنیل سے مل کر اس سے کہا،
جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور نبیوں نے کیا ہے، وہ ہم کو مل گیا، وہ یوسف کا بیٹا یسو ناصری ہے۔
نتنیل نے اس سے کہا،
کیا ناصر سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟
فلپس نے کہا،
چل کر دیکھ لے۔
یسو نے نتنیل کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کے حق میں کہا،
دیکھو یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے، اس میں مکر نہیں۔
نتنیل نے اس سے کہا،
تو مجھے کہاں سے جانتا ہے؟
یسو نے اس کے جواب میں کہا،
اس سے پہلے کہ فلپس نے تجھے بلایا، جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا، میں نے تجھے دیکھا۔
نتنیل نے اس کو جواب دیا،
اے ربی، تو خدا کا بیٹا ہے، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے۔
یسو نے جواب میں اس سے کہا،
میں نے جو تجھ سے کہا کہ تجھ کو انجیر کے درخت کے نیچے دیکھا، کیا تو اس لیے ایمان لایا ہے؟ تو ان سے بھی بڑے بڑے معجزے دیکھے گا۔
پھر اس سے کہا،
میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن آدم پر اترتے دیکھو گے۔
یوحنا کی انجیل باب دو۔ پھر تیسرے دن قانا گلیل میں ایک شادی ہوئی اور یسو کی ماں وہاں تھی، اور یسو اس کے شاگردوں کی بھی اس شادی میں دعوت تھی۔ اور جب میں ختم ہو چکی تو یسو کی ماں نے اس سے کہا،
ان کے پاس میں نہیں رہی۔
یسو نے اس سے کہا،
اے عورت، مجھے تجھ سے کیا کام ہے؟ ابھی میرا وقت نہیں آیا۔
اس کی ماں نے خادموں سے کہا،
جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔
وہاں یہودیوں کی طہارت کے دستور کے موافق پتھر کے 6 مٹکے رکھے تھے اور ان میں دو دو تین تین من کی گنجائش تھی۔ یسو نے ان سے کہا،
مشکوں میں پانی بھر دو۔
پس انہوں نے ان کو لبالب بھر دیا۔ پھر اس نے ان سے کہا،
اب نکال کر میرے مجلس کے پاس لے جاؤ۔
پس وہ لے گئے۔ جب میرے مجلس نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا اور جانتا نہ تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، مگر خادم جنہوں نے پانی نکالا تھا جانتے تھے، تو میرے مجلس نے دلہا کو بلا کر اس سے کہا،
ہر شخص پہلے اچھی مائیں پیش کرتا ہے اور ناقص اس وقت جب پی کر چھک گئے، مگر تو نے اچھی مائیں اب تک رکھ چھوڑی ہے۔
یہ پہلا معجزہ یسو نے قانا گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے۔ اس کے بعد وہ اور اس کی ماں اور بھائی اور اس کے شاگرد کفور نہوم کو گئے اور وہاں چند روز رہے۔ یہودیوں کی عید فسا نزدیک تھی اور یسو یریشلم کا گیا۔ اس نے ہیکل میں بیل اور بھیڑ اور کبوتر بیچنے والوں کو اور صرافوں کو بیٹھے پایا اور رسیوں کا کوڑا بنا کر سب کو یعنی بھیڑوں اور بیلوں کو ہیکل سے نکال دیا اور صرافوں کی نقدی بکھیر دی اور ان کے کسبے الگ دیے، اور کبوتر خروشوں سے کہا،
ان کو یہاں سے لے جاؤ، میرے باپ کے گھر کو تجارت کا گھر نہ بناؤ.
اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ لکھا ہے
تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا جائے گی.
بس یہودیوں نے جواب میں اس سے کہا
تو جو ان کاموں کو کرتا ہے ہمیں کون سا نشان دکھاتا ہے؟
یسو نے جواب میں ان سے کہا
اس مقدس کو اٹھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا.
یہودیوں نے کہا
40 برس میں یہ مقدس بنا ہے اور کیا تو اسے 3 دن میں کھڑا کر دے گا؟
مگر اس نے اپنے بدن کے مقدس کی بابت کہا تھا. پس جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ اس نے یہ کہا تھا, اور انہوں نے کتاب مقدس اور اس قول کا جو یسوع نے کہا تھا یقین کیا. جب وہ یروشلیم میں فسح کے وقت عید میں تھا تو بہت سے لوگ ان معجزوں کو دیکھ کر جو وہ دکھاتا تھا اس کے نام پر ایمان لائے, لیکن یسوع اپنی نسبت ان پر اعتبار نہ کرتا تھا اس لیے کہ وہ سب کچھ جانتا تھا اور اس کی حاجت نہ رکھتا تھا کہ کوئی انسان کے حق میں گواہی دے, کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ انسان کے دل میں کیا کیا ہے. یوحنا کی انجیل باب 3. فریسیوں میں سے ایک شخص نکودیموس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا. اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا
اے ربی, ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے, کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو.
یسوع نے جواب میں اس سے کہا
میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا.
نکودیموس نے اس سے کہا
آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟
یسوع نے جواب دیا
میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے, اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے. تعجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے, اور تو اس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی ہے اور کہاں کو جاتی ہے. جو کوئی روح سے پیدا ہوا ایسا ہی ہے.
نکودیموس نے جواب میں اس سے کہا
یہ باتیں کیوں کر ہو سکتی ہیں؟
یسوع نے جواب میں اس سے کہا
بنی اسرائیل کا استاد ہو کر کیا تو ان باتوں کو نہیں جانتا؟ میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو ہم جانتے ہیں وہ کہتے ہیں, اور جسے ہم نے دیکھا ہے اس کی گواہی دیتے ہیں, اور تم ہماری گواہی قبول نہیں کرتے. جب میں نے تم سے زمین کی باتیں کہیں اور تم نے یقین نہیں کیا, تو اگر میں تم سے آسمان کی باتیں کہوں تو کیوں کر یقین کرو گے؟ اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا, یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے. اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا, اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے, تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے. کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا, تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے, بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے. جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا, جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا, اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا. اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا, اس لیے کہ ان کے کام برے تھے. کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے پاس نہیں آتا, ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے. مگر جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ نور کے پاس آتا ہے, تاکہ اس کے کام ظاہر ہوں کہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں.
ان باتوں کے بعد یسوع اور اس کے شاگرد یہودیہ کے ملک میں آئے, اور وہ وہاں ان کے ساتھ رہ کر बपतिस्मा देने लगा और यहुन्ना भी शालीम के नजदीक ऐनून में बपतिस्मा देता था क्योंकि वहाँ पानी बहुत था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे क्योंकि यहुन्ना उस वक्त तक कैद खाने में डाला न गया था। बस यहुन्ना के शागिर्दों की किसी यहूदी के साथ तहारत की बाबत बहस हुई। उन्होंने यहुन्ना के पास आकर कहा,
ऐ रब्बी, जो शख्स यर्दन के पार तेरे साथ था जिसकी तूने गवाही दी है, देख वो बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आती।
यहुन्ना ने जवाब में कहा,
इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसको आसमान से ना दिया जाए। तुम खुद मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं मगर उसके आगे भेजा गया हूँ। जिसकी दुल्हन है वो दुल्हा है मगर दुल्हा का दोस्त जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दुल्हा की आवाज से बहुत खुश होता है। बस मेरी यह खुशी पूरी हो गई। जरूर है कि वो बड़े और मैं घटू। जो ऊपर से आता है वो सबसे ऊपर है, जो जमीन से है वो जमीन ही से है और जमीन ही की कहता है। जो आसमान से आता है वो सबसे ऊपर है, जो कुछ उसने देखा और सुना उसी की गवाही देता है और कोई उसकी गवाही कबूल नहीं करता। जिसने उसकी गवाही कबूल की उसने इस बात पर मोहर कर दी कि खुदा सच्चा है, क्योंकि जिसे खुदा ने भेजा वो खुदा की बातें कहता है, इसलिए कि वो रूह नाप नाप कर नहीं देता। बाप बेटे से मोहब्बत रखता है और उसने सब चीजें उसके हाथ में दे दी हैं। जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता जिंदगी को ना देखेगा बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता है।
यूहन्ना की इंजील बाब 4। फिर जब खुदावंद को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से ज्यादा शागिर्द करता और बपतिस्मा देता है, गो यीशु आप नहीं बल्कि उसके शागिर्द बपतिस्मा देते थे, तो वो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना जरूर था। वो सामरिया के एक शहर तक आया जो सुखार कहलाता है। वो उस कते के नजदीक है जो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था और याकूब का कुआं वहीं था। चुनाचे यीशु सफर से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये छठे घंटे के करीब था। सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा,
मुझे पानी पिला,
क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मोल लेने को गए थे। उस सामरी औरत ने उससे कहा,
तू यहूदी होकर वो सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते।
यीशु ने जवाब में उससे कहा,
अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता।
औरत ने उससे कहा,
ऐ खुदावन, तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है जिसने हमको यह कुआं दिया और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके मवेशी ने उसमें से पिया?
यीशु ने जवाब में उससे कहा,
जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा न होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा।
औरत ने उससे कहा,
ऐ खुदावन, वो पानी मुझको दे ताकि मैं न प्यासी हूँ न पानी भरने को यहाँ तक आऊँ।
यीशु ने उससे कहा,
जा अपने शौहर को यहाँ बुला ला।
औरत ने जवाब में उससे कहा,
मैं बेशौहर हूँ।
यीशु ने उससे कहा,
तूने खूब कहा कि मैं बेशौहर हूँ, क्योंकि तू 5 शौहर कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो तेरा शौहर नहीं। ये तूने सच कहा।
औरत ने उससे कहा,
ऐ खुदावन, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर परिष्टिश की और तुम कहते हो कि वो जगह जहाँ परिष्टिश करनी चाहिए यरूशलेम में है।
यीशु ने उससे कहा,
ऐ औरत, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम न इस पहाड़ पर बाप की परिष्टिश करोगे और न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी परिष्टिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी परिष्टिश करते हैं, क्योंकि नजात यहूदियों में से है, मगर वो वक्त आता है बल्कि अभी है कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करें।
औरत ने उससे कहा,
मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा।
यीशु ने उससे कहा,
मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ।
इतने में उसके शागिर्द आ गए और ताज्जुब करने लगे कि वे औरत से बातें कर रहा है, तो भी किसी ने ना कहा कि तू क्या चाहता है या उससे किस लिए बातें करता है। बस औरत अपना घड़ा छोड़कर शहर में चली गई और लोगों से कहने लगी,
आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। क्या मुमकिन है कि मसीह यही है?
वो शहर से निकलकर उसके पास आने लगे। इतने में उसके शागिर्द उससे ये दरख्वास्त करने लगे,
ऐ रब्बी, कुछ खा ले।
लेकिन उसने उनसे कहा,
मेरे पास खाने के लिए ऐसा खाना है जिसे तुम नहीं जानते।
बस शागिर्दों ने आपस में कहा,
क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है?
यीशु ने उनसे कहा,
मेरा खाना ये है कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम कहते नहीं कि फसल आने में अभी 4 महीने बाकी हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर नजर करो कि फसल पक गई है और काटने वाला मजदूरी पाता और हमेशा की जिंदगी के लिए फल जमा करता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर खुशी करें। क्योंकि इस पर यह मसल ठीक आती है कि बोने वाला और है, काटने वाला और। मैंने तुम्हें वो खेत काटने के लिए भेजा जिस पर तुमने मेहनत न की, औरों ने मेहनत की और तुम उनकी मेहनत के फल में शरीक हुए।
और उस शहर के बहुत से सामरी उस औरत के कहने से, जिसने गवाही दी कि उसने मेरे सब काम मुझे बता दिए, उस पर ईमान लाए। बस जब वो सामरी उसके पास आए तो उससे दरखास्त करने लगे कि हमारे पास रह। चुनाचे वो 2 रोज वहां रहा और उसके कलाम के सबब से और भी बहुत तेरे ईमान लाए। और उस औरत से कहा,
अब हम तेरे कहने ही से ईमान नहीं लाते, क्योंकि हमने खुद सुन लिया और जानते हैं कि फिल हकीकत ये दुनिया का मुनज्जी है।
फिर उन 2 दिनों के बाद वो वहां से रवाना होकर गलील को गया, क्योंकि यीशु ने खुद गवाही दी,
नबी अपने वतन में इज्जत नहीं पाता।
बस जब वो गलील में आया तो गलीलियों ने उसे कबूल किया, इसलिए कि जितने काम उसने यरूशलेम में ईद के वक्त किए थे उन्होंने उनको देखा था, क्योंकि वो भी ईद में गए थे। बस वो फिर कानाए गलील में आया जहां उसने पानी को मैं बनाया था, और बादशाह का एक मुलाजिम था जिसका बेटा कफरनहूम में बीमार था। वो ये सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे दरख्वास्त करने लगा कि चलकर मेरे बेटे को शिफा बख्श, क्योंकि वो मरने को था। यीशु ने उससे कहा,
जब तक तुम निशान और अजीब काम न देखो हरगिज़ ईमान न लाओगे।
बादशाह के मुलाजिम ने उससे कहा,
आए खुदावन, मेरे बच्चे के मरने से पहले चल।
यीशु ने उससे कहा,
जा, तेरा बेटा जीता है।
उस शख्स ने उस बात का यकीन किया जो यीशु ने उससे कही और चला गया। वो रास्ते ही में था कि उसके नौकर उसे मिले और कहने लगे,
तेरा लड़का जीता है।
उसने उनसे पूछा,
उसे किस वक्त से आराम होने लगा था?
उन्होंने कहा,
कल सातवें घंटे में उसकी तप उतर गई।
बस बाप जान गया कि वही वक्त था जब यीशु ने उससे कहा था, तेरा बेटा जीता है, और वो खुद और उसका सारा घराना ईमान लाया। ये दूसरा मौजिजा है जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। यूहन्ना की इंजील बाब 5। इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलम को गया। यरूशलम में भीड़ दरवाजे के पास एक हौज है जो इब्रानी में बैत हज्जा कहलाता है, और उसके 5 बरामदे हैं। इनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पाए मुर्दा लोग पानी के हिलने के मुंतजर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज पर उतरकर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा,
क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है?
उस बीमार ने उसे जवाब दिया,
ऐ खुदावन, मेरे पास कोई आदमी नहीं, जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है।
यीशु ने उससे कहा,
उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर।
वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वो दिन सब्त का था। बस यहूदी उससे जिसने शिफा पाई थी कहने लगे
कि आज सब्त का दिन है, तुझे चारपाई उठाना रवा नहीं।
उसने उन्हें जवाब दिया,
जिसने मुझे तंदुरुस्त किया उसने मुझे फरमाया कि अपनी चारपाई उठाकर चल फिर।
उन्होंने उससे पूछा,
वो कौन शख्स है जिसने तुझसे कहा चारपाई उठाकर चल फिर?
लेकिन जो शिफा पा गया था वो न जानता था कि कौन है, क्योंकि भीड़ के सबब से यीशु वहाँ से टल गया था। इन बातों के बाद वो यीशु को हैकल में मिला। उसने उससे कहा,
देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह न करना, ऐसा न हो कि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत आए।
उस आदमी ने जाकर यहूदियों को खबर दी कि जिसने मुझे तंदुरुस्त किया वो यीशु है। इसलिए यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वो ऐसे काम सप्त के दिन करता था। लेकिन यीशु ने उनसे कहा,
मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ।
इस सबब से यहूदी और भी ज्यादा उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे कि वो न फकत सब्त का हुक्म तोड़ता बल्कि खुदा को खास अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता था। बस यीशु ने उनसे कहा,
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता सिवा उसके जो बाप को करते देखता है, क्योंकि जिन कामों को वो करता है उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है। इसलिए कि बाप बेटे को अजीज रखता है और जितने काम खुद करता है उसे दिखाता है, बल्कि इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम ताज्जुब करो। क्योंकि जिस तरह बाप मुर्दों को उठाता और जिंदा करता है, उसी तरह बेटा भी जिन्हें चाहता है जिंदा करता है। क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया है, ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें जिस तरह बाप की इज्जत करते हैं। जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो बाप की जिसने उसे भेजा इज्जत नहीं करता। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा है कि अपने आप में जिंदगी रखे, बल्कि उसे अदालत करने का भी इख्तियार बख्शा, इसलिए कि वो आदमजाद है। इससे ताज्जुब न करो क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की कयामत के वास्ते और जिन्होंने बदी की है सजा की कयामत के वास्ते। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ अदालत करता हूँ और मेरी अदालत रास्त है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की मर्जी चाहता हूँ। अगर मैं खुद अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं, एक और है जो मेरी गवाही देता है और मैं जानता हूँ कि मेरी गवाही जो वो देता है सच्ची है। तुमने यूहन्ना के पास पयाम भेजा और उसने सच्ची गवाही दी है, लेकिन मैं अपनी निस्बत इंसान की गवाही मंजूर नहीं करता। तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ कि तुम नजात पाओ। वो जलता और चमकता हुआ चराग था और तुमको कुछ अरसे तक उसकी रोशनी में खुश रहना मंजूर हुआ, लेकिन मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम बाप ने मुझे पूरे करने को दिए, यानी यही काम जो मैं करता हूँ, वो मेरे गवाह हैं कि बाप ने मुझे भेजा है, और बाप जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने न कभी उसकी आवाज सुनी है और न उसकी सूरत देखी, और उसके कलाम को अपने दिलों में कायम नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा है उसका यकीन नहीं करते। तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं आदमियों से इज्जत नहीं चाहता, लेकिन मैं तुमको जानता हूँ कि तुम में खुदा की मोहब्बत नहीं। मैं अपने बाप के नाम से आया हूँ और तुम मुझे कबूल नहीं करते। अगर कोई और अपने ही नाम से आए तो उसे कबूल कर लोगे। तुम जो एक दूसरे से इज्जत चाहते हो और वो इज्जत जो खुदाए वाहिद की तरफ से होती है नहीं चाहते, क्यों कर ईमान ला सकते हो? ये ना समझो कि मैं बाप से तुम्हारी शिकायत करूंगा। तुम्हारी शिकायत करने वाला तो है, यानी मूसा, जिस पर तुमने उम्मीद लगा रखी है, क्योंकि अगर तुम मूसा का यकीन करते तो मेरा भी यकीन करते, इसलिए कि उसने मेरे हक में लिखा है। लेकिन जब तुम उसके नविश्तों का यकीन नहीं करते तो मेरी बातों का क्यों का यकीन करोगे?
यूहन्ना की इंजील बाब 6। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील यानी तिबरियास की झील के पार गया और बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, क्योंकि जो मौजूदे वो बीमारों पर करता था उनको वो देखते थे। यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और अपने शागिर्दों के साथ वहाँ बैठा, और यहूदियों की ईद फसा नजदीक थी। बस जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पास बड़ी भीड़ आ रही है, तो फिलिप उससे कहा,
हम इनके खाने के लिए कहाँ से रोटियाँ मोल लें?
मगर उसने उसे आजमाने के लिए ये कहा, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूँगा। फिलिप उसने उसे जवाब दिया,
200 दिनार की रोटियाँ इनके लिए काफी न होंगी कि हर एक को थोड़ी सी मिल जाए।
उसके शागिर्दों में से एक ने, यानी शमाउन पतरस के भाई इंद्रियास ने उससे कहा,
यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियाँ और 2 मछलियाँ हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या है?
यीशु ने कहा,
लोगों को बिठाओ।
उस जगह बहुत घास थी, बस वो मर्द जो तखमीनन 5,000 थे बैठ गए। यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, और इसी तरह मछलियों में से जिस कदर चाहते थे बांट दिया। जब वो सैर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा,
बचे हुए टुकड़ों को जमा करो ताकि कुछ जाये न हो।
चुनांचे उन्होंने जमा किया और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। बस जो मौजिजा उसने दिखाया वो लोग उसे देखकर कहने लगे,
जो नबी दुनिया में आने वाला था बिल हकीकत यही है।
बस यीशु ये मालूम करके कि वो आकर मुझे बादशाह बनाने के लिए पकड़ा चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। फिर जब शाम हुई तो उसके शागिर्द झील के किनारे गए और कश्ती में बैठकर झील के पार कफरनहूम को चले जाते थे। उस वक्त अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास न आया था, और आंधी के सबब से झील में मौजें उठने लगी। बस जब वो खेते खेते 3-4 मील के करीब निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और कश्ती के नजदीक आते देखा और डर गए। मगर उसने उनसे कहा,
मैं हूँ, डरो मत।
बस वो उसे कश्ती में चढ़ा लेने को राजी हुए और फौरन वो कश्ती उस जगह जा पहुंची जहां वो जाते थे। दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी ये देखा कि यहाँ एक के सिवा और कोई छोटी कश्ती न थी और यीशु अपनी शागिर्दों के साथ कश्ती पर सवार न हुआ था बल्कि सिर्फ उसके शागिर्द चले गए थे। लेकिन बाद छोटी कश्तियाँ तिबरियास से उस जगह के नजदीक आईं जहाँ उन्होंने खुदावंद के शुक्र करने के बाद रोटी खाई थी। बस जब भीड़ ने देखा कि यहाँ न यीशु है न उसके शागिर्द तो वो खुद छोटी कश्तियों में बैठकर यीशु की तलाश में कफरनहूम को आए और झील के पार उससे मिलकर कहा,
ए रब्बी, तू यहाँ कब आया?
यीशु ने उनके जवाब में कहा,
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मौजूदे देखे बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर सेर हुए। फानी खुराक के लिए मेहनत न करो बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक ठहरती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है।
बस उन्होंने उससे कहा,
हम क्या करें ताकि खुदा के काम अंजाम दें?
यीशु ने जवाब में उनसे कहा,
खुदा का काम यह है कि जिसे उसने भेजा है उस पर ईमान लाओ।
बस उन्होंने उससे कहा,
फिर तू कौन सा निशान दिखाता है ताकि हम देखकर तेरा यकीन करें? तू कौन सा काम करता है?
हमारे बाप दादा ने बयाबार में मन खाया, चुनांचे लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए आसमान से रोटी दी।
यीशु ने उनसे कहा,
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें न दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है।
उन्होंने उससे कहा,
ए खुदावन, ये रोटी हमको हमेशा दिया कर।
यीशु ने उनसे कहा,
जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। लेकिन मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख लिया है फिर भी ईमान नहीं लाते। जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज निकाल ना दूंगा, क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूँ कि अपनी मर्जी के मुआफिक अमल करूँ, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूँ। और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ खो ना दूं, बल्कि उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूँ, क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूँ।
बस यहूदी उस पर बड़बड़ाने लगे इसलिए कि उसने कहा था,
जो रोटी आसमान से उतरी वो मैं हूँ।
और उन्होंने कहा,
क्या ये यूसुफ का बेटा यीशु नहीं, जिसके बाप और माँ को हम जानते हैं?
अब ये क्यों कर कहता है कि मैं आसमान से उतरा हूँ?
यीशु ने जवाब में उनसे कहा,
आपस में न बड़बड़ाओ, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। नबियों के सहीफों में ये लिखा है कि वो सब खुदा से तालीम याफ्ता होंगे, जिस किसी ने बाप से सुना और सीखा है वो मेरे पास आता है। ये नहीं कि किसी ने बाप को देखा है, मगर जो खुदा की तरफ से है उसी ने बाप को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। जिंदगी की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादा ने बयाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है ताकि आदमी उसमें से खाए और न मरे। मैं हूँ वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है।
बस यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे।
ये शख्स अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है?
यीशु ने उनसे कहा,
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त न खाओ और उसका खून न पियो, तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अबद तक जिंदा रहेगा।
ये बातें उसने कफरनहूम के एक इबादत खाने में तालीम देते वक्त कही। इसलिए उसके शागिर्दों में से बहुतों ने सुनकर कहा,
ये कलाम नागवार है, इसे कौन सुन सकता है?
यीशु ने अपने जी में जान करके मेरे शागिर्द आपस में इस बात पर बड़बड़ाते हैं, उनसे कहा,
क्या तुम इस बात से ठोकर खाते हो? अगर तुम इब्ने आदम को ऊपर जाते देखोगे जहां वो पहले था, तो क्या होगा? जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, वो रूह हैं और जिंदगी भी है, मगर तुम में से बाज ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाए।
क्योंकि यीशु शुरू से जानता था कि जो ईमान नहीं लाते वो कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। फिर उसने कहा,
इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक बाप की तरफ से उसे ये तौफीक न दी जाए।
इस पर उसके शागिर्दों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए और इसके बाद उसके साथ न रहे। बस यीशु ने उन बारह से कहा,
क्या तुम भी चला जाना चाहते हो?
शमाउन पतरस ने उसे जवाब दिया,
अय खुदावन, हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं, और हम ईमान लाए और जान गए हैं कि खुदा का कुद्दूस तू ही है।
यीशु ने उन्हें जवाब दिया,
क्या मैंने तुम बारह को नहीं चुन लिया? और तुम में से एक शख्स शैतान है।
उसने ये शमाउन इस्करियोती के बेटे यहूदा की निस्बत कहा, क्योंकि यही जो उन बारह में से था उसे पकड़वाने को था। यूहन्ना की इंजील बाप 7। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदिया में फिरना ना चाहता था, इसलिए कि यहूदी उसके कत्ल की कोशिश में थे और यहूदियों की ईद ख़याम नजदीक थी। पस उसके भाइयों ने उससे कहा,
यहाँ से रवाना होकर यहूदिया को चला जा, ताकि जो काम तू करता है उन्हें तेरे शागिर्द भी देखें, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मशहूर होना चाहे और छिपकर काम करे। अगर तू ये काम करता है तो अपने आप को दुनिया पर जाहिर कर।
क्योंकि उसके भाई भी उस पर ईमान न लाए थे, बस यीशु ने उनसे कहा,
मेरा तो अभी वक्त नहीं आया, मगर तुम्हारे लिए सब वक्त है। दुनिया तुमसे अदावत नहीं रख सकती, लेकिन मुझसे रखती है, क्योंकि मैं उस पर गवाही देता हूँ कि उसके काम बुरे हैं। तुम ईद में जाओ, मैं अभी इस ईद में नहीं जाता, क्योंकि अभी तक मेरा वक्त पूरा नहीं हुआ।
ये बातें उनसे कहकर वो गलील ही में रहा, लेकिन जब उसके भाई ईद में चले गए, उस वक्त वो भी गया, जाहिरा नहीं बल्कि गोया पोशीदा। बस यहूदी उसे ईद में ये कहकर ढूंढने लगे,
वह कहाँ है?
और लोगों में उसकी बाबत चुपके चुपके बहुत सी गुफ्तगू हुई। बास कहते थे,
वो नेक है,
और बास कहते थे,
नहीं बल्कि वो लोगों को गुमराह करता है।
तो भी यहूदियों के डर से कोई शख्स उसकी बाबत साफ साफ न कहता था। और जब ईद के आधे दिन गुजर गए तो यीशु हैकल में जाकर तालीम देने लगा। बस यहूदियों ने ताज्जुब करके कहा,
इसको बगैर पढ़े क्यों कर इल्म आ गया?
यीशु ने जवाब में उनसे कहा,
میری تعلیم میری نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کی ہے، اگر کوئی اس کی مرضی پر چلنا چاہے تو وہ اس تعلیم کی بابت جان جائے گا کہ خدا کی طرف سے ہے یا میں اپنی طرف سے کہتا ہوں۔ جو اپنی طرف سے کچھ کہتا ہے وہ اپنی عزت چاہتا ہے، لیکن جو اپنے بھیجنے والے کی عزت چاہتا ہے وہ سچا ہے اور اس میں ناراضگی نہیں۔ کیا موسیٰ نے تمہیں شریعت نہیں دی؟ تو بھی تم میں سے شریعت پر کوئی عمل نہیں کرتا، تم کیوں میرے قتل کی کوشش میں ہو؟
لوگوں نے جواب دیا، تجھ میں تو بدرو ہے، کون تیرے قتل کی کوشش میں ہے؟ یسو نے جواب میں ان سے کہا،
میں نے ایک کام کیا اور تم سب تعجب کرتے ہو، اس سبب سے موسیٰ نے تمہیں ختنے کا حکم دیا ہے، حالانکہ وہ موسیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ باپ دادا سے چلا آیا ہے، اور تم سبت کے دن آدمی کا ختنہ کرتے ہو۔ جب سبت کو آدمی کا ختنہ کیا جاتا تاکہ موسیٰ کی شریعت کا حکم نہ ٹوٹے، تو کیا مجھ سے اس لیے غصے ہو کہ میں نے سبت کے دن ایک آدمی کو بالکل تندرست کر دیا؟ ظاہر کے موافق فیصلہ نہ کرو بلکہ انصاف سے فیصلہ کرو۔
تب بعض یروشلیمی کہنے لگے،
کیا یہ وہی نہیں جس کے قتل کی کوشش ہو رہی ہے؟
لیکن دیکھو یہ صاف صاف کہتا ہے اور وہ اس سے کچھ نہیں کہتے، کیا ہو سکتا ہے کہ سرداروں نے سچ جان لیا کہ مسیح یہی ہے؟
اس کو تو ہم جانتے ہیں کہ کہاں کا ہے، مگر مسیح جب آئے گا تو کوئی نہ جانے گا کہ وہ کہاں کا ہے۔
پس یسو نے ہیکل میں تعلیم دیتے وقت پکار کر کہا،
تم مجھے بھی جانتے ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میں کہاں کا ہوں، اور میں آپ سے نہیں آیا، مگر جس نے مجھے بھیجا ہے وہ سچا ہے، اس کو تم نہیں جانتے، میں اسے جانتا ہوں، اس لیے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اور اسی نے مجھے بھیجا ہے۔
بس وہ اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن اس لیے کہ اس کا وقت ابھی نہ آیا تھا کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا، مگر بھیڑ میں سے بہتےرے اس پر ایمان لائے اور کہنے لگے،
مسیح جب آئے گا تو کیا ان سے زیادہ معجزے سے دکھائے گا جو اس نے دکھائے؟
فریسیوں نے لوگوں کو سنا کہ اس کی بابت چپکے چپکے یہ گفتگو کرتے ہیں، بس سردار کاہنوں اور فریسیوں نے اسے پکڑنے کو پیادے بھیجے۔ یسو نے کہا،
میں اور تھوڑے دنوں تک تمہارے پاس ہوں، پھر اپنے بھیجنے والے کے پاس چلا جاؤں گا، تم مجھے ڈھونڈو گے مگر نہ پاؤ گے، اور جہاں میں ہوں تم نہیں آ سکتے۔
یہودیوں نے آپس میں کہا،
یہ کہاں جائے گا کہ ہم اسے نہ پائیں گے؟ کیا ان کے پاس جائے گا جو یونانیوں میں جا بجا رہتے ہیں اور یونانیوں کو تعلیم دے گا؟
یہ کیا بات ہے جو اس نے کہی کہ تم مجھے ڈھونڈو گے مگر نہ پاؤ گے، اور جہاں میں ہوں تم وہاں نہیں آ سکتے؟
پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے، یسو کھڑا ہوا اور پکار کر کہا،
اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں۔
اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے جو اس پر ایمان لائے، کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا، اس لیے کہ یسو ابھی اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا۔ بس بھیڑ میں سے باز نے یہ باتیں سن کر کہا،
بے شک یہی وہ نبی ہے۔
اوروں نے کہا،
یہ مسیح ہے۔
اور باز نے کہا،
کیوں، کیا مسیح گلیل سے آئے گا؟ کیا کتاب مقدس میں یہ نہیں آیا کہ مسیح داؤد کی نسل اور بیت لحم کے گاؤں سے آئے گا جہاں کا داؤد تھا؟
بس لوگوں میں اس کے سبب سے اختلاف ہوا، اور ان میں سے بعض اس کو پکڑنا چاہتے تھے، مگر کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا۔ بس پیادے سردار کاہنوں اور فریسیوں کے پاس آئے اور انہوں نے ان سے کہا،
تم اسے کیوں نہ لائے؟
پیادوں نے جواب دیا،
انسان نے کبھی ایسا کلام نہیں کیا۔
فریسیوں نے انہیں جواب دیا،
کیا تم بھی گمراہ ہو گئے؟ بھلا سرداروں یا فریسیوں میں سے بھی کوئی اس پر ایمان لایا؟ مگر یہ عام لوگ جو شریعت سے واقف نہیں لانتی ہیں۔
نیکودیموس نے جو پہلے اس کے پاس آیا تھا اور انہی میں سے تھا، ان سے کہا،
کیا ہماری شریعت کسی شخص کو مجرم ٹھہراتی ہے جب تک پہلے اس کی سن کر جان نہ لے کہ وہ کیا کرتا ہے؟
انہوں نے اس کے جواب میں کہا، کیا تو بھی گلیل کا ہے؟ تلاش کر اور دیکھ کہ گلیل میں سے کوئی نبی برپا نہیں ہونے کا۔
پھر ان میں سے ہر ایک اپنے گھر چلا گیا۔ یوحنا کی انجیل باب 8۔ مگر یسوع زیتون کے پہاڑ کو گیا، صبح سویرے ہی وہ پھر ہیکل میں آیا اور سب لوگ اس کے پاس آئے اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا، اور فقیہ اور فریسی ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے یسوع سے کہا،
اے استاد، یہ عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے۔ توریت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ایسی عورتوں کو سنگسار کریں، بس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے؟
انہوں نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا تاکہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالیں، مگر یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا۔ جب وہ اس سے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا،
جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر مارے،
اور پھر جھک کر زمین پر انگلی سے لکھنے لگا۔ وہ یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے اور یسوع اکیلا رہ گیا اور عورت وہیں بیچ میں رہ گئی۔ یسوع نے سیدھے ہو کر اس سے کہا،
اے عورت، یہ لوگ کہاں گئے؟ کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا؟
اس نے کہا،
اے خداوند، کسی نے نہیں۔
یسوع نے کہا،
میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا پھر گناہ نہ کرنا۔
یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا،
دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔
فریسیوں نے اس سے کہا،
تو اپنی گواہی آپ دیتا ہے، تیری گواہی سچی نہیں۔
یسوع نے جواب میں ان سے کہا،
اگرچہ میں اپنی گواہی آپ دیتا ہوں تو بھی میری گواہی سچی ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں کو جاتا ہوں، لیکن تم کو معلوم نہیں کہ میں کہاں سے آتا ہوں یا کہاں کو جاتا ہوں۔ تم جسم کے مطابق فیصلہ کرتے ہو، میں کسی کا فیصلہ نہیں کرتا، اور اگر میں فیصلہ کروں بھی تو میرا فیصلہ سچا ہے، کیونکہ میں اکیلا نہیں بلکہ میں ہوں اور باپ ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ اور تمہاری توریت میں بھی لکھا ہے کہ دو آدمیوں کی گواہی مل کر سچی ہوتی ہے، ایک تو میں خود اپنی گواہی دیتا ہوں اور ایک باپ جس نے مجھے بھیجا میری گواہی دیتا ہے۔
انہوں نے اس سے کہا،
تیرا باپ کہاں ہے؟
یسوع نے جواب دیا،
نہ تم مجھے جانتے ہو نہ میرے باپ کو، اگر مجھے جانتے تو میرے باپ کو بھی جانتے۔
اس نے ہیکل میں تعلیم دیتے وقت یہ باتیں بیت المال میں کہیں اور کسی نے اس کو نہ پکڑا، کیونکہ ابھی تک اس کا وقت نہ آیا تھا۔ اس نے پھر ان سے کہا،
میں جاتا ہوں اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور اپنے گناہ میں مرو گے، جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے۔
پس یہودیوں نے کہا،
کیا وہ اپنے آپ کو مار ڈالے گا جو کہتا ہے جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے؟
اس نے ان سے کہا،
تم نیچے کے ہو میں اوپر کا ہوں، تم دنیا کے ہو میں دنیا کا نہیں ہوں، اس لیے میں نے تم سے یہ کہا کہ اپنے گناہوں میں مرو گے، کیونکہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے کہ میں وہی ہوں تو اپنے گناہوں میں مرو گے۔
انہوں نے اس سے کہا،
تو کون ہے؟
یسوع نے ان سے کہا،
وہی ہوں جو شروع سے تم سے کہتا آیا ہوں، مجھے تمہاری نسبت بہت کچھ کہنا اور فیصلہ کرنا ہے، لیکن جس نے مجھے بھیجا وہ سچا ہے، اور جو میں نے اس سے سنا وہی دنیا سے کہتا ہوں۔
وہ نہ سمجھے کہ ہم سے باپ کی نسبت کہتا ہے، بس یسوع نے کہا،
جب تم ابن آدم کو اونچے پر چڑھاؤ گے تو جانو گے کہ میں وہی ہوں اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، بلکہ جس طرح باپ نے مجھے سکھایا اسی طرح یہ باتیں کہتا ہوں، اور جس نے مجھے بھیجا وہ میرے ساتھ ہے، اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، کیونکہ میں ہمیشہ وہی کام کرتا ہوں जो उसे पसंद आते हैं।
जब वो ये बातें कह रहा था तो बहुत ही उस पर ईमान लाए। बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था,
अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी।
उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो अब्राहम की नस्ल से हैं और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे, तू क्यों कर कहता है कि तुम आजाद किए जाओगे। यीशु ने उन्हें जवाब दिया,
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, बेटा अब तक रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई आजाद होगे। मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम की नस्ल से हो तो भी मेरे कत्ल की कोशिश में हो, क्योंकि मेरा कलाम तुम्हारे दिल में जगह नहीं पाता। मैंने जो अपने बाप के हाँ देखा है वो कहता हूँ, और तुमने जो अपने बाप से सुना है वो करते हो।
उन्होंने जवाब में उससे कहा,
हमारा बाप तो अब्राहम है।
यीशु ने उनसे कहा,
अगर तुम अब्राहम के फर्जंद होते तो अब्राहम कैसे काम करते, लेकिन अब तुम मुझ जैसे शख्स के कत्ल की कोशिश में हो जिसने तुमको वही हक बात बताई जो खुदा से सुनी। अब्राहम ने तो ये नहीं किया था, तुम अपने बाप कैसे काम करते हो।
उन्होंने उससे कहा,
हम हराम से पैदा नहीं हुए हैं, हमारा एक बाप है यानी खुदा।
यीशु ने उनसे कहा,
अगर खुदा तुम्हारा बाप होता तो तुम मुझसे मोहब्बत रखते, इसलिए कि मैं खुदा में से निकला और आया हूँ, क्योंकि मैं आपसे नहीं आया बल्कि उसी ने मुझे भेजा। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते, इसलिए कि मेरा कलाम सुन नहीं सकते। तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही से कहता है, क्योंकि वो झूठा है बल्कि झूठ का बाप है। लेकिन मैं जो सच बोलता हूँ इसीलिए तुम मेरा यकीन नहीं करते। तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? अगर मैं सच बोलता हूँ तो मेरा यकीन क्यों नहीं करते? जो खुदा से होता है वो खुदा की बातें सुनता है, तुम इसलिए नहीं सुनते कि खुदा से नहीं हो।
यहूदियों ने जवाब में उससे कहा,
क्या हम खूब नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में बदरू है?
यीशु ने जवाब दिया,
मुझ में बदरू नहीं, मगर मैं अपने बाप की इज्जत करता हूँ और तुम मेरी बेइज्जती करते हो। लेकिन मैं अपनी बुजुर्गी नहीं चाहता, हाँ एक है जो उसे चाहता और फैसला करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि अगर कोई शख्स मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अब तक कभी मौत को न देखेगा।
यहूदियों ने उससे कहा, अब हमने जान लिया कि तुझ में बदरू है। अब्राहम मर गया और नबी मर गए, मगर तू कहता है कि अगर कोई मेरे कलाम पर अमल करेगा तो अब तक कभी मौत का मजा न चखेगा। हमारा बाप अब्राहम तो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और नबी भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है?
यीशु ने जवाब दिया,
अगर मैं आप अपनी बड़ाई करूं तो मेरी बड़ाई कुछ नहीं, लेकिन मेरी बड़ाई मेरा बाप करता है जिसे तुम कहते हो कि हमारा खुदा है। तुमने उसे नहीं जाना, लेकिन मैं उसे जानता हूँ, और अगर कहूँ कि उसे नहीं जानता तो तुम्हारी तरह झूठा बनूंगा, मगर मैं उसे जानता और उसके कलाम पर अमल करता हूँ। तुम्हारा बाप अब्राहम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, चुनाचे उसने देखा और खुश हुआ।
यहूदियों ने उससे कहा,
तेरी उम्र तो अभी 50 वर्ष की नहीं, फिर क्या तूने अब्राहम को देखा है?
यीशु ने उनसे कहा,
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि बेशतर उससे कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूँ।
बस उन्होंने उसे मारने को पत्थर उठाए, मगर यीशु छिप कर हैकल से निकल गया। यूहन्ना की इंजील बाब 9। फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा,
ऐ रब्बी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने?
यीशु ने जवाब दिया,
न इसने गुनाह किया था न इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें जाहिर हूँ। जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन को करना जरूर है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता। जब तक मैं दुनिया में हूँ दुनिया का नूर हूँ।
ये कहकर उसने जमीन पर थूका और थूक से मिट्टी सानी और वो मिट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा,
जा शिलोह के हौज में धो ले।
बस उसने जाकर धोया और बीना होकर वापस आया। बस पड़ोसी और जिन जिन लोगों ने पहले उसको भीख मांगते देखा था कहने लगे,
क्या ये वो नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था?
बाज ने कहा,
ये वही है।
औरों ने कहा,
नहीं लेकिन कोई उसका हम शक्ल है।
उसने कहा,
मैं वही हूँ।
बस वो उससे कहने लगे,
फिर तेरी आंखें क्यों कर खुल गईं?
उसने जवाब दिया,
उस शख्स ने जिसका नाम यीशु है मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर रख कर मुझसे कहा, शिलोह में जाकर धो ले। बस में गया और धोकर बीना हो गया।
उन्होंने उससे कहा,
वो कहाँ है?
उसने कहा,
मैं नहीं जानता।
लोग उस शख्स को जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए और जिस रोज यीशु ने मिट्टी सान कर उसकी आंखें खोली थीं, वो सप्त का दिन था। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा,
तू किस तरह बीना हुआ?
उसने उनसे कहा,
उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई फिर मैंने धो लिया और मैं बीना हूँ।
बस बाज फरीसी कहने लगे,
ये आदमी खुदा की तरफ से नहीं क्योंकि सप्त के दिन को नहीं मानता।
बाज ने कहा,
गुनहगार आदमी क्यों कर ऐसे मौजूदे दिखा सकता है?
बस उनमें इख्तलाफ हुआ। उन्होंने फिर उस अंधे से कहा,
उसने जो तेरी आंखें खोली तू उसके हक में क्या कहता है?
उसने कहा,
वो नबी है।
लेकिन यहूदियों को यकीन न आया कि ये अंधा था और बीना हो गया है जब तक उन्होंने उसके माँ बाप को जो बीना हो गया था बुलाकर उनसे पूछ न लिया,
क्या ये तुम्हारा बेटा है जिसे तुम कहते हो कि अंधा पैदा हुआ था? फिर वो अब क्यों कर देखता है?
उसके माँ बाप ने जवाब में कहा,
हम जानते हैं कि ये हमारा बेटा है और अंधा पैदा हुआ था।
लेकिन ये हम नहीं जानते कि अब वो क्यों कर देखता है और ना ये जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली। वो तो बालिग है, उसी से पूछो, वो अपना हाल आप बता देगा।
ये उसके माँ बाप ने यहूदियों के डर से कहा, क्योंकि यहूदी एका कर चुके थे कि अगर कोई उसके मसीह होने का इकरार करे तो इबादत खाने से खारिज किया जाए। इस वास्ते उसके माँ बाप ने कहा कि वो बालिग है, उसी से पूछो। बस उन्होंने उस शख्स को जो अंधा था दोबारा बुलाकर कहा,
खुदा की तमजीद कर, हम तो जानते हैं कि ये आदमी गुनहगार है।
उसने जवाब दिया,
मैं नहीं जानता कि वो गुनहगार है या नहीं। एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था अब बीना हूँ।
फिर उन्होंने उससे कहा,
उसने तेरे साथ क्या किया, किस तरह तेरी आंखें खोली?
उसने उन्हें जवाब दिया,
मैं तो तुमसे कह चुका और तुमने ना सुना, दोबारा क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके शागिर्द होना चाहते हो?
वो उसे बुरा भला कहकर कहने लगे,
तू ही उसका शागिर्द है, हम तो मूसा के शागिर्द हैं। हम जानते हैं कि खुदा ने मूसा के साथ कलाम किया है, मगर इस शख्स को नहीं जानते कि कहाँ का है।
उस आदमी ने जवाब में उनसे कहा,
ये तो ताज्जुब की बात है कि तुम नहीं जानते कि वो कहाँ का है, हालांकि उसने मेरी आंखें खोली। हम जानते हैं कि खुदा गुनहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी सुनता है। दुनिया की शुरू से कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म की अंधे की आंखें खोली हो। अगर ये शख्स खुदा की तरफ से ना होता तो कुछ ना कर सकता।
उन्होंने जवाब में उससे कहा,
तू तो बिल्कुल गुनाहों में पैदा हुआ, तू हमको क्या सिखाता है?
और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया और जब उससे मिला तो कहा,
क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता है?
उसने जवाब में कहा,
ऐ खुदावंद, वो कौन है कि मैं उस पर ईमान लाऊं?
यीशु ने उससे कहा,
तूने तो उसे देखा है और जो तुझसे बातें करता है वही है।
उसने कहा,
ऐ खुदावंद, मैं ईमान लाता हूँ।
और उसे सिजदा किया। यीशु ने कहा,
मैं दुनिया में अदालत के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं।
जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा,
अगर तुम अंधे होते तो गुनहगार न ठहरते, मगर अब कहते हो कि हम देखते हैं, बस तुम्हारा गुनाह कायम रहता है।
यूहन्ना की इंजील बाब 10।
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई दरवाजे से भेड़खाने में दाखिल नहीं होता बल्कि और किसी तरफ से चढ़ जाता है वो चोर और डाकू है, लेकिन जो दरवाजे से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए दरबान दरवाजा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाकर बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज पहचानती हैं। मगर वो गैर शख्स के पीछे न जाएंगी बल्कि उससे भागेंगी, क्योंकि गैरों की आवाज नहीं पहचानती।
यीशु ने उनसे ये तमसील कही, लेकिन वो न समझे कि ये क्या बातें हैं जो हमसे कहता है। बस यीशु ने उनसे फिर कहा,
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी न सुनी। दरवाजा मैं हूँ, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने और हराक करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर जो न चरवाहा है न भेड़ों का मालिक, भेड़ियों को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उनको पकड़ता और परागंदा करता है। वो इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है और उसको भेड़ों की फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूँ, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़खाने की नहीं, मुझे उनको भी लाना जरूर है और वो मेरी आवाज सुनेंगी, फिर एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा। बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूँ ताकि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं बल्कि मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है। ये हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला।
इन बातों के सबब से यहूदियों में फिर इख्तलाफ हुआ। उनमें से बहुतेरे तो कहने लगे,
उसमें बदरू है, वो दीवाना है, तुम उसके क्यों सुनते हो?
और उन्होंने कहा,
ये ऐसे शख्स की बातें नहीं जिसमें बदरू हो।
क्या बदरू अंधों की आंखें खोल सकती है?
यरूशलेम में ईद तजदीद हुई और जाड़े का मौसम था और यीशु हैकल के अंदर सुलेमानी बरामदे में टहल रहा था। बस यहूदियों ने उसके गिर्द जमा होकर उससे कहा,
तू कब तक हमारे दिल को डामाडोल रखेगा? अगर तू मसीह है तो हमसे साफ कह दे।
यीशु ने उन्हें जवाब दिया,
मैंने तो तुमसे कह दिया मगर तुम यकीन नहीं करते। जो काम मैं अपने बाप के नाम से करता हूँ वही मेरे गवाह हैं, लेकिन तुम इसलिए यकीन नहीं करते कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ, और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूँ और वो अबद तक कभी हलाक न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा बाप जिसने मुझे वो दी है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। मैं और बाप एक हैं।
यहूदियों ने उसे संसार करने के लिए फिर पत्थर उठाए, यीशु ने उन्हें जवाब दिया,
मैंने तुमको बाप की तरफ से बहुतेरे अच्छे काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के सबब से मुझे संसार करते हो?
यहूदियों ने उसे जवाब दिया,
अच्छे काम के सबब से नहीं बल्कि कुफर के सबब से तुझे संसार करते हैं, और इसलिए कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है।
यीशु ने उन्हें जवाब दिया,
क्या तुम्हारी शरीयत में ये नहीं लिखा कि मैंने कहा तुम खुदा हो, जबकि उसने उन्हें खुदा कहा जिनके पास खुदा का कलाम आया और किताब मुकद्दस का बातिल होना मुमकिन नहीं। आया तुम उस शख्स से जिसे बाप ने मुकद्दस करके दुनिया में भेजा, कहते हो कि तू कुफर बकता है इसलिए कि मैंने कहा मैं खुदा का बेटा हूँ। अगर मैं अपने बाप के काम नहीं करता तो मेरा यकीन न करो, लेकिन अगर मैं करता हूँ तो वो मेरा यकीन न करो मगर उन कामों का तो यकीन करो, ताकि तुम जानो और समझो कि बाप मुझ में है और मैं बाप में।
उन्होंने फिर उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो उनके हाथ से निकल गया। वो फिर यर्दन के पास उस जगह चला गया जहाँ यूहन्ना पहले बपतिस्मा दिया करता था और वहीं रहा, और बहुतेरे उसके पास आए और कहते थे,
यूहन्ना ने कोई मौजज़ा नहीं दिखाया मगर जो कुछ यूहन्ना ने इसके हक में कहा था वो सच था,
और वहाँ बहुतेरे उस पर ईमान लाए। यूहन्ना की इंजील बाब 11। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नाम एक आदमी बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने खुदावन पर इत्र डालकर अपने बालों से उसके पांव पोंछे। इसी का भाई लाजर बीमार था। बस उसकी बहनों ने उसे ये कहला भेजा,
हे खुदावन, देख जिसे तू अजीज रखता है वो बीमार है।
यीशु ने सुनकर कहा,
ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीले से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो।
और यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से मोहब्बत रखता था, पर जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस जगह था वहीं दो दिन और रहा। फिर उसके बाद शागिर्दों से कहा,
आओ फिर यहूदिया को चले।
शागिर्दों ने उससे कहा,
आए रब्बी, अभी तो यहूदी तुझे संसार करना चाहते थे और तू फिर वहाँ जाता है?
यीशु ने जवाब दिया,
क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? अगर कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता क्योंकि वो दुनिया की रोशनी देखता है, लेकिन अगर कोई रात को चले तो ठोकर खाता है क्योंकि उसमें रोशनी नहीं।
उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा,
हमारा दोस्त लाजर सो गया है लेकिन मैं उसे जगाने जाता हूँ।
बस शागिर्दों ने उससे कहा,
आए खुदावन, अगर सो गया है तो बच जाएगा।
यीशु ने तो उसकी मौत की बाबत कहा था मगर वो समझे कि आराम की नींद की बाबत कहा। तब यीशु ने उनसे साफ कह दिया,
लाजर मर गया और मैं तुम्हारे सबब से खुश हूँ कि वहाँ न था, ताकि तुम ईमान लाओ, लेकिन आओ हम उसके पास चलें।
बस तोमा ने, जिसे तोम कहते थे, अपने साथ के शागिर्दों से कहा,
आओ हम भी चलें ताकि उसके साथ मरे।
बस यीशु को आकर मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हुए। बैतनिय्याह यरूशलेम के नजदीक करीबन 2 मील के फासले पर था, और बहुत से यहूदी मर्था और मरियम को उनके भाई के बारे में तसल्ली देने आए थे। बस मर्था यीशु के आने की खबर सुनकर उससे मिलने को गई, लेकिन मरियम घर में बैठी रही। मर्था ने यीशु से कहा,
अरे खुदावन, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता, और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा।
यीशु ने उससे कहा,
तेरा भाई जी उठेगा।
मर्था ने उससे कहा,
मैं जानती हूँ कि कयामत में आखिरी दिन जी उठेगा।
यीशु ने उससे कहा,
कयामत और जिंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है को वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी न मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है?
उसने उससे कहा,
हाँ ऐ खुदावन, मैं मान ला चुकी हूँ कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है।
ये कहकर वो चली गई और चुपके से अपनी बहन मरियम को बुलाकर कहा,
उस्ताद यही है और तुझे बुलाता है।
वो सुनते ही जल्द उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था बल्कि उसी जगह था जहां मर्था उससे मिली थी। बस जो यहूदी घर में उसके पास थे और उसे तसल्ली दे रहे थे, ये देखकर कि मरियम जल्द उठकर बाहर गई, इस ख्याल से उसके पीछे हो लिए कि वो कब्र पर रोने जाती है। जब मरियम उस जगह पहुंची जहां यीशु था और उसे देखा तो उसके कदमों पर गिरकर उससे कहा,
ऐ खुदावन, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता।
जब यीशु ने उसे और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते देखा तो दिल में निहायत रंजीदा हुआ और घबरा कर कहा,
तुमने उसे कहाँ रखा है?
उन्होंने कहा,
हे खुदावन, चलकर देख ले।
यीशु के आंसू बहने लगे। बस यहूदियों ने कहा,
देखो वो उसको कैसा अजीज था।
लेकिन उनमें से बाज ने कहा,
ये शख्स जिसने अंधे की आंखें खोली इतना ना कर सका, ये आदमी ना मरता।
यीशु फिर अपने दिल में निहायत रंजीदा होकर कब्र पर आया। वो एक गार था और उस पर पत्थर धरा था। यीशु ने कहा,
पत्थर हटाओ।
उस मरे हुए शख्स की बहन मर्था ने उससे कहा,
ए खुदावन, उसमें से अब तो बदबू आती है क्योंकि उसे 4 दिन हो गए।
यीशु ने उससे कहा,
क्या मैंने तुझसे कहा न था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी?
बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा,
ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली, और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के बाइस जो आस पास खड़े हैं, मैंने ये कहा ताकि वो ईमान लाएं कि तू ही ने मुझे भेजा है।
और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा,
ऐ लाजर, निकला।
जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका चेहरा रूमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा,
उसे खोल कर जाने दो।
बस बहुतेरे यहूदी जो मरियम के पास आए थे और जिन्होंने यीशु का ये काम देखा उस पर ईमान लाए, मगर उनमें से बाज ने फरीसियों के पास जाकर उन्हें यीशु के कामों की खबर दी। बस सरदार काहिनों और फरीसियों ने सदर अदालत के लोगों को जमा करके कहा,
हम करते क्या हैं? ये आदमी तो बहुत मौजज़े दिखाता है।
अगर हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर ईमान ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और कौम दोनों पर कब्जा कर लेंगे।
और उनमें से काइफा नाम एक शख्स ने जो उस साल सरदार काहिन था उनसे कहा,
तुम कुछ नहीं जानते और न सोचते हो कि तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि एक आदमी उम्मत के वास्ते मरे न कि सारी कौम हलाक हो।
मगर उसने ये अपनी तरफ से नहीं कहा बल्कि उस साल सरदार काहिन होकर नबूवत की कि यीशु उस कौम के वास्ते मरेगा, और न सिर्फ उस कौम के वास्ते बल्कि इस वास्ते भी कि खुदा के परागंदा फर्जंदों को जमा करके एक कर दे। बस वो उसी रोज से उसे कत्ल करने का मशवरा करने लगे। बस उस वक्त से यीशु यहूदियों में ऐलानिया नहीं फिरा बल्कि वहां से जंगल के नजदीक के इलाके में इफ्राइम नाम एक शहर को चला गया और अपने शागिर्दों के साथ वहीं रहने लगा। और यहूदियों की ईद फसा नजदीक थी और बहुत लोग फसा से पहले देहात से यरूशलम को गए ताकि अपने आप को पाक करें। बस वो यीशु को ढूंढने और हैकल में खड़े होकर आपस में कहने लगे,
तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या वो ईद में नहीं आएगा?
और सरदार काहिनों और फरीसियों ने हुक्म दे रखा था कि अगर किसी को मालूम हो कि वो कहाँ है तो इत्तला दे ताकि उसे पकड़ लें।
यूहन्ना की इंजील बाब 12। फिर यीशु फसा से 6 रोज पहले बैतनिया में आया, जहां लाजर था जिसे यीशु ने मुर्दों में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके वास्ते शाम का खाना तैयार किया और मर्था खिदमत करती थी, मगर लाजर उनमें से था जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे। फिर मरियम ने जटामासी का आज सेर खालिस और बेश कीमत इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और घर इत्र की खुशबू से महक गया। मगर उसके शागिर्दों में से एक शख्स यहूदा इस्करियोती, जो उसे पकड़वाने को था, कहने लगा,
ये इत्र 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों न दिया गया?
उसने ये इसलिए न कहा कि उसको गरीबों की फिक्र थी, बल्कि इसलिए कि चोर था, और चूंकि उसके पास उनकी थैली रहती थी, उसमें जो कुछ पड़ता वो निकाल लेता था। बस यीशु ने कहा,
उसे ये इत्र मेरे दफन के दिन के लिए रखने दे, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास न रहूंगा।
बस यहूदियों में से आवाम ये मालूम करके कि वो वहाँ है, न सिर्फ यीशु के सबब से आए, बल्कि इसलिए भी कि लाजर को देखें, जिसे उसने मुर्दों में से जिलाया था। लेकिन सरदार काहिनों ने मशवरा किया कि लाजर को भी मार डालें, क्योंकि उसके 22 बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर ईमान लाए। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर के यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे,
मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है और इस्राएल का बादशाह है।
जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है,
ऐ सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है।
उसके शागिर्द पहले तो ये बातें न समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थीं और लोगों ने उसके साथ ये सुलूक किया था। बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे जब उसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और मुर्दों में से जिलाया था। इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने ये मौजज़ा दिखाया है। बस फरीसियों ने आपस में कहा,
सोचो तो तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो जहान उसका पैरो हो चला।
जो लोग ईद में परस्तिश करने आए थे उनमें से बाज यूनानी थे। बस उन्होंने फिलिपुस के पास जो बैत सैदाए गलील का था आकर उससे दरखास्त की,
जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं।
फिलिपुस ने आकर इंद्रियास से कहा, फिर इंद्रियास और फिलिपुस ने आकर यीशु को खबर दी। यीशु ने जवाब में उनसे कहा,
वो वक्त आ गया है कि इब्ने आदम जलाल पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सब फल लाता है। जो अपनी जान को अजीज रखता है वो उसे खो देता है, और जो दुनिया में अपनी जान से अदावत रखता है वो उसे हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखेगा। अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा खादिम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। अब मेरी जान घबराती है, बस मैं क्या कहूं? ऐ बाप मुझे इस घड़ी से बचा, लेकिन मैं इसी सबब से तो इस घड़ी को पहुंचा हूं। ऐ बाप अपने नाम को जलाल दे।
बस आसमान से आवाज आई,
मैंने इसको जलाल दिया है और फिर भी दूंगा।
जो लोग खड़े सुन रहे थे उन्होंने कहा,
बादल गरजा,
और उन्होंने कहा कि फरिश्ता उससे हम कलाम हुआ। यीशु ने जवाब में कहा,
यह आवाज मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आई है। अब दुनिया की अदालत की जाती है, अब दुनिया का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं अगर जमीन से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा।
उसने इस बात से इशारा किया कि मैं किस मौत से मरने को हूँ। लोगों ने उसको जवाब दिया,
हमने शरीयत की यह बात सुनी है कि मसीह अबद तक रहेगा, फिर तू क्यों कर कहता है कि इब्ने आदम का ऊंचे पर चढ़ाया जाना जरूर है? ये इब्ने आदम कौन है?
बस यीशु ने उनसे कहा,
और थोड़ी देर तक नूर तुम्हारे दरमियान है, जब तक नूर तुम्हारे साथ है चले चलो, ऐसा ना हो कि तारीकी तुम्हें आ पकड़े, और जो तारीकी में चलता है वो नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक नूर तुम्हारे साथ है नूर पर ईमान लाओ ताकि नूर के फर्जंद बनो।
यीशु ये बात कहकर चला गया और उनसे अपने आप को छिपाया, और अगरचे उसने उनके सामने इतने मौजूदे दिखाए तो भी वो उस पर ईमान न लाए, ताकि यशाया नबी का कलाम पूरा हो जो उसने कहा,
ऐ खुदावंद हमारे पैगाम का किसने यकीन किया है, और खुदावंद का हाथ किस पर जाहिर हुआ है।
इस सबब से वो ईमान न ला सके कि यशाया ने फिर कहा,
उसने उनकी आंखों को अंधा और उनके दिल को सख्त कर दिया, ऐसा न हो कि वो आंखों से देखें और दिल से समझे और रुजू करें और मैं उन्हें शिफा बख्शूं।
यशाया ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसका जलाल देखा और उसने उसी के बारे में कलाम किया, तो भी सरदारों में से भी बहुतेरे उस पर ईमान लाए, मगर फरीसियों के सबब से इकरार ना करते थे, ता ऐसा ना हो कि इबादत खाने से खारिज किए जाएं, क्योंकि वो खुदा से इज्जत हासिल करने की निस्बत इंसान से इज्जत हासिल करना ज्यादा चाहते थे। यीशु ने पुकार कर कहा,
जो मुझ पर ईमान लाता है वो मुझ पर नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले पर ईमान लाता है, और जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं नूर होकर दुनिया में आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए अंधेरे में न रहे। अगर कोई मेरी बातें सुनकर उन पर अमल न करे तो मैं उसको मुजरिम नहीं ठहराता, क्योंकि मैं दुनिया को मुजरिम ठहराने नहीं बल्कि दुनिया को नजात देने आया हूँ। जो मुझे नहीं मानता और मेरी बातों को कबूल नहीं करता उसका एक मुजरिम ठहराने वाला है, यानी जो कलाम मैंने किया है, आखिरी दिन वही उसे मुजरिम ठहराएगा, क्योंकि मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं कहा बल्कि बाप जिसने मुझे भेजा उसी ने मुझको हुक्म दिया है कि क्या कहूं और क्या बोलूं, और मैं जानता हूं कि उसका हुक्म हमेशा की जिंदगी है। बस जो कुछ मैं कहता हूं जिस तरह बाप ने मुझसे फरमाया है उसी तरह कहता हूं।
यूहन्ना की इंजील बाब 13। ईद फसा से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और जब इबलीस शमाउन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने ये जान करके बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ, दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा, इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रूमाल कमर में बंधा था उससे पहुंचने शुरू किए। फिर वो शमाउन पतरस तक पहुंचा, उसने उससे कहा,
ऐ खुदावन क्या तू मेरे पांव धोता है?
यीशु ने जवाब में उससे कहा,
जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता मगर बाद में समझेगा।
पतरस ने उससे कहा,
तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा।
यीशु ने उसे जवाब दिया,
अगर मैं तुझे न धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं।
शमाउन पतरस ने उससे कहा,
ऐ खुदावन सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि हाथ और सिर भी धोते।
यीशु ने उससे कहा,
जो नहा चुका है उसको पांव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं बल्कि सरासर पाक है, और तुम पाक हो लेकिन सबके सब नहीं।
क्योंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था इसलिए उसने कहा, तुम सब पाक नहीं हो, बस
जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहा,
क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो, बशर्ते कि उन पर अमल भी करो। मैं तुम सब की बाबत नहीं कहता, जिनको मैंने चुना उन्हें मैं जानता हूं, लेकिन ये इसलिए है कि ये नविश्ता पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें जताए देता हूं, ताकि जब हो जाए तो तुम ईमान लाओ कि मैं वही हूं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है।
ये बातें कहकर यीशु अपने दिल में घबराया और ये गवाही दी,
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक शख्स मुझे पकड़वाएगा।
शागिर्द सुबह करके कि वो किसकी निस्बत कहता है एक दूसरे को देखने लगे। उसके शागिर्दों में से एक शख्स जिससे यीशु मोहब्बत रखता था यीशु के सीने की तरफ झुका हुआ खाना खाने बैठा था। बस शमाउन पतरस ने उससे इशारा करके कहा,
बता तो वो किसकी निस्बत कहता है?
उसने उसी तरह यीशु की छाती का सहारा लेकर कहा,
हाय खुदावन, वो कौन है?
यीशु ने जवाब दिया,
जिसे मैं निवाला डुबो कर दे दूंगा वही है।
फिर उसने निवाला डुबोया और लेकर शमाउन इस्करियोते के बेटे यहूदा को दे दिया, और इस निवाले के बाद शैतान उसमें समा गया। बस यीशु ने उससे कहा,
जो कुछ तू करता है जल्द कर ले।
मगर जो खाना खाने बैठे थे उनमें से किसी को मालूम न हुआ कि उसने ये उससे किस लिए कहा। क्योंकि यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए बाज ने समझा कि यीशु से ये कहता है, जो कुछ हमें ईद के लिए दरकार है खरीद ले, या ये कि मोहताजों को कुछ दे। बस वो निवाला लेकर फील फॉर बाहर चला गया, और ये रात का वक्त था। जब वो बाहर चला गया तो यीशु ने कहा,
अब इब्ने आदम ने जलाल पाया और खुदा ने उसमें जलाल पाया, और खुदा भी उसे अपने में जलाल देगा, बल्कि उसे फील फॉर जलाल देगा। ऐ बच्चो, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा कि जहां मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते, वैसा ही अब तुमसे भी कहता हूँ। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो।
शमाउन पतरस ने उससे कहा,
अय खुदावन, तू कहाँ जाता है?
यीशु ने जवाब दिया,
जहाँ मैं जाता हूँ अब तो तू मेरे पीछे आ नहीं सकता, मगर बाद में मेरे पीछे आएगा।
पतरस ने उससे कहा,
अय खुदावन, मैं तेरे पीछे अब क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपनी जान दूंगा।
यीशु ने जवाब दिया,
क्या तू मेरे लिए अपनी जान देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि मूर्ख बांग न देगा जब तक तू तीन बार मेरा इनकार न कर लेगा।
यूहन्ना की इंजील बाब 14।
तुम्हारा दिल न घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो, और जहां मैं जाता हूं तुम वहां की राह जानते हो।
तोमा ने उससे कहा,
आए खुदावन, हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, फिर राह किस तरह जाने?
यीशु ने उससे कहा,
راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے، اب اسے جانتے ہو اور دیکھ لیا ہے۔
فلیپس نے اس سے کہا،
اے خداون، باپ کو ہمیں دکھا، یہی ہمیں کافی ہے۔
یسو نے اس سے کہا،
اے فلیپس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ کیا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، لیکن باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے۔ میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں، نہیں تو میرے کاموں ہی کے سبب سے میرا یقین کرو۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے، یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا۔ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی سچائی کا روح، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے اور نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس آؤں گا۔ تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی، مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے۔ جو کہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے۔ اس روز تم جانو گے کہ میں اپنے باپ میں ہوں اور تم مجھ میں اور میں تم میں۔ جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان پر عمل کرتا ہے، وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا، اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور میں اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا۔
اس یہودا نے جو اسکریوتی نہ تھا اس سے کہا،
اے خداون، کیا ہوا کہ تو اپنے آپ کو ہم پر تو ظاہر کیا چاہتا ہے مگر دنیا پر نہیں؟
یسو نے جواب میں اس سے کہا،
اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو میرے کلام پر عمل کرے گا، اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا، اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے۔ جو مجھ سے محبت نہیں رکھتا وہ میرے کلام پر عمل نہیں کرتا، اور جو کلام تم سنتے ہو وہ میرا نہیں بلکہ باپ کا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہی، لیکن مددگار یعنی روح القدس، جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں۔ جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ تم سن چکے ہو کہ میں نے تم سے کہا کہ جاتا ہوں اور تمہارے پاس پھر آتا ہوں۔ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے تو اس بات سے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں خوش ہوتے، کیونکہ باپ مجھ سے بڑا ہے، اور اب میں نے تم سے اس کے ہونے سے پہلے کہہ دیا ہے، تاکہ جب ہو جائے تو تم یقین کرو۔ اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں، لیکن یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا جانے کہ میں باپ سے محبت رکھتا ہوں، اور جس طرح باپ نے مجھے حکم دیا میں ویسا ہی کرتا ہوں۔ اٹھو یہاں سے چلیں۔
یوحنا کی انجیل باب 15۔
انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے، جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو، तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम न रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम न रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम न रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती हैं। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम हूं। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही हैं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। मेरा हुक्म यह है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूँ अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हो। अब से मैं तुम्हें नौकर न कहूंगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है, इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। मैं तुमको इन बातों का हुक्म इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी अदावत रखी है। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को अजीज रखती, लेकिन चूंकि तुम दुनिया के नहीं बल्कि मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया है, इस वास्ते दुनिया तुमसे अदावत रखती है। जो बात मैंने तुमसे कही थी उसे याद रखो कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता। अगर उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, अगर उन्होंने मेरी बात पर अमल किया तो तुम्हारी बात पर भी अमल करेंगे, लेकिन ये सब कुछ वो मेरे नाम के सबब से तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वो मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। अगर मैं ना आता और उनसे कलाम न करता तो वो गुनहगार न ठहरते, लेकिन अब उनके पास उनके गुनाह का उज्र नहीं। जो मुझसे अदावत रखता है वो मेरे बाप से भी अदावत रखता है। अगर मैं उनमें वो काम न करता जो किसी दूसरे ने नहीं किए तो वो गुनहगार न ठहरते, मगर अब तो उन्होंने मुझे और मेरे बाप दोनों को देखा और दोनों से अदावत रखी। लेकिन ये इसलिए हुआ कि वो कौल पूरा हो जो उनकी शरीयत में लिखा है कि उन्होंने मुझसे मुफ्त अदावत रखी। लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी सच्चाई का रूह जो बाप से सातिर होता है, तो वो मेरी गवाही देगा और तुम भी गवाह हो, क्योंकि शुरू से मेरे साथ हो।
यूहन्ना की इंजील बाप 16।
मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कहीं कि तुम ठोकर न खाओ। लोग तुमको इबादत खानों से खारिज कर देंगे, बल्कि वो वक्त आता है कि जो कोई तुमको कत्ल करेगा वो गुमान करेगा कि मैं खुदा की खिदमत करता हूं, और वो इसलिए ये करेंगे कि उन्होंने न बाप को जाना न मुझे। लेकिन मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही कि जब उनका वक्त आए तो तुमको याद आ जाए कि मैंने तुमसे कह दिया था। और मैंने शुरू में तुमसे ये बातें इसलिए न कही कि मैं तुम्हारे साथ था, मगर अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ, और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहाँ जाता है, बल्कि इसलिए कि मैंने ये बातें तुमसे कही तुम्हारा दिल गम से भर गया। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। और वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते, रास्तबाजी के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे, अदालत के बारे में इसलिए कि दुनिया का सरदार मुजरिम ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहना है मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन जब वो यानी सच्चाई का रूह आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से न कहेगा लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। वो मेरा जलाल जाहिर करेगा इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मुझ ही से हासिल करता है और तुम्हें खबरें देगा। थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे।
बस उसके बाद शागिर्दों ने आपस में कहा,
ये क्या है जो वो हमसे कहता है कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में तुम मुझे देख लोगे, और ये कि इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूँ।
बस उन्होंने कहा,
थोड़ी देर जो वो कहता है ये क्या बात है, हम नहीं जानते कि क्या कहता है।
यीशु ने ये जानकर कि वो मुझसे सवाल करना चाहते हैं उनसे कहा,
क्या तुम आपस में मेरी इस बात की निस्बत पूछपाछ करते हो कि थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देख लोगे? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम तो रोओगे और मातम करोगे मगर दुनिया खुश होगी। तुम गमगीन तो होगे लेकिन तुम्हारा गम ही खुशी बन जाएगा। जब औरत जनने लगती है तो गमगीन होती है इसलिए कि उसके दुख की घड़ी आ पहुंची, लेकिन जब बच्चा पैदा हो चुकता है तो इस खुशी से कि दुनिया में एक आदमी पैदा हुआ उस दर्द को फिर याद नहीं करती। बस तुम्हें भी अब तो गम है मगर मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारा दिल खुश होगा और तुम्हारी खुशी कोई तुमसे छीन न लेगा। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। मैंने ये बातें तुमसे तमसीलों में कही, वो वक्त आता है कि फिर तुमसे तमसीलों में न कहूंगा बल्कि साफ साफ तुम्हें बात की खबर दूंगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि बाप से तुम्हारे लिए दरखास्त करूंगा, इसलिए कि बाप तो आप ही तुमको अजीज रखता है क्योंकि तुमने मुझको अजीज रखा है और ईमान लाए हो कि मैं बाप की तरफ से निकला। मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूँ, फिर दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाता हूँ।
उसके शागिर्दों ने कहा, देख अब तू साफ साफ कहता है और कोई तमसील नहीं कहता। अब हम जान गए कि तू सब कुछ जानता है और इसका मोहताज नहीं कि कोई तुझसे पूछे। इस सबब से हम ईमान लाते हैं कि तू खुदा से निकला है।
यीशु ने उन्हें जवाब दिया,
क्या तुम अब ईमान लाते हो? देखो वो घड़ी आती है बल्कि आ पहुंची कि तुम सब परागंदा होकर अपने अपने घर की राह लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं हूँ क्योंकि बाप मेरे साथ है। मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ।
यूहन्ना की इंजील बाब 17। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा,
ऐ बाप वो घड़ी आ पहुंची, अपने बेटे का जलाल जाहिर कर ताकि बेटा तेरा जलाल जाहिर करे। चुनाचे तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया है ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा है उन सबको वो हमेशा की जिंदगी दे, और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया, और अब ऐ बाप तू उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से बेशतर तेरे साथ रखता था मुझे अपने साथ जलाली बना दे। मैंने तेरे नाम को उन आदमियों पर जाहिर किया जिन्हें तूने दुनिया में से मुझे दिया, और वो तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया, और उन्होंने तेरे कलाम पर अमल किया है। अब वो जान गए कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वो सब तेरी ही तरफ से है, क्योंकि जो कलाम तूने मुझे पहुंचाया वो मैंने उनको पहुंचा दिया और उन्होंने उसको कबूल किया और सच जान लिया कि मैं तेरी तरफ से निकला हूं, और वो ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा। मैं उनके लिए दरखास्त करता हूं, मैं दुनिया के लिए दरखास्त नहीं करता बल्कि उनके लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वो तेरे हैं और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, और जो तेरा है वो मेरा है, और इनसे मेरा जलाल जाहिर हुआ है। मैं आगे को दुनिया में ना होऊंगा, मगर ये दुनिया में है और मैं तेरे पास आता हूं। ऐ कुद्दूस बाप, अपने उस नाम के वसीले से जो तूने मुझे बख्शा है उनकी हिफाजत कर, ताकि वो हमारी तरह एक हो। जब तक मैं उनके साथ रहा मैंने तेरे उस नाम के वसीले से जो तूने मुझे बख्शा है उनकी हिफाजत की, मैंने उनकी निगेबानी की, और हलाकत के फर्जंद के सिवा उनमें से कोई हलाक न हुआ, ताकि किताब मुकद्दस का लिखा पूरा हो। लेकिन अब मैं तेरे पास आता हूं और ये बातें दुनिया में कहता हूं ताकि मेरी खुशी उन्हें पूरी पूरी हासिल हो। मैंने तेरा कलाम उन्हें पहुंचा दिया और दुनिया ने उनसे अदावत रखी, इसलिए कि जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं। मैं दरखास्त नहीं करता कि तू उन्हें दुनिया से उठा ले, बल्कि ये कि उस शरीर से उनकी हिफाजत कर जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं। उन्हें सच्चाई के वसीले से मुकद्दस कर, तेरा कलाम सच्चाई है। जिस तरह तूने मुझे दुनिया में भेजा उसी तरह मैंने भी उन्हें दुनिया में भेजा, और उनकी खातिर मैं अपने आप को मुकद्दस करता हूं ताकि वो भी सच्चाई के वसीले से मुकद्दस किए जाएं। मैं सिर्फ इन्हीं के लिए दरखास्त नहीं करता बल्कि उनके लिए भी जो इनके कलाम के वसीले से मुझ पर ईमान लाएंगे, ताकि वो सब एक हों, यानी जिस तरह ऐ बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं वो भी हम में हूं, और दुनिया ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा, और वो जलाल जो तूने मुझे दिया है मैंने उन्हें दिया है, ताकि वो एक हों जैसे हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, ताकि वो कामिल होकर एक हो जाएं, और दुनिया जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जिस तरह के तूने मुझसे मोहब्बत रखी उनसे भी मोहब्बत रखी। ऐ बाप, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है जहां मैं हूं वो भी मेरे साथ हो, ताकि मेरे उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया है, क्योंकि तूने बिनाए आलम से बेशतर मुझसे मोहब्बत रखी। ऐ आदिल बाप, दुनिया ने तुझे नहीं जाना मगर मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना कि तूने मुझे भेजा है, और मैंने उन्हें तेरे नाम से वाकिफ किया और करता रहूंगा, ताकि जो मोहब्बत तुझको मुझसे थी वो उनमें हो और मैं उनमें हूं।
यूहन्ना की इंजील बाब 18। यीशु ये बातें कहकर अपने शागिर्दों के साथ किद्रोन के नाले के पार गया। वहां एक बाग था, उसमें वो और उसके शागिर्द दाखिल हुए, और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उस जगह को जानता था, क्योंकि यीशु अक्सर अपने शागिर्दों के साथ वहां जाया करता था। बस यहूदा सिपाहियों की पलटन और सरदार काहिनों और फरीसियों से प्यादे लेकर मशालों और चिरागों और हथियारों के साथ वहां आया। यीशु उन सब बातों को जो उसके साथ होने वाली थी जानकर बाहर निकला और उनसे कहने लगा,
किसे ढूंढते हो?
उन्होंने उसे जवाब दिया,
यीशु नासरी को।
यीशु ने उनसे कहा,
मैं ही हूँ।
और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। उसके ये कहते ही कि मैं ही हूँ, वो पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़े। बस उसने उनसे फिर पूछा,
तुम किसे ढूंढते हो?
उन्होंने कहा,
यीशु नासरी को।
यीशु ने जवाब दिया,
मैं तुमसे कह तो चुका कि मैं ही हूँ, बस अगर मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो।
ये उसने इसलिए कहा कि उसका वो कौल पूरा हो कि जिन्हें तूने मुझे दिया मैंने उनमें से किसी को भी न खोया। बस शमाउन पत्रस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और सरदार काहिन के नौकर पर चलाकर उसका दहना कान उड़ा दिया। उस नौकर का नाम लमखुस था। यीशु ने पत्रस से कहा,
तलवार को म्यान में रख, जो प्याला बाप ने मुझको दिया क्या मैं उसे न पीऊं?
तब सिपाहियों और उनके सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया और पहले उसे हन्ना के पास ले गए, क्योंकि वो उस बरस के सरदार काहिन काइफा का सुसर था। ये वही काइफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि उम्मत के वास्ते एक आदमी का मरना बेहतर है। और शमाउन पत्रस यीशु के पीछे हो लिया और एक और शागिर्द भी। ये शागिर्द सरदार काहिन का जान पहचान था और यीशु के साथ सरदार काहिन के दीवान खाने में गया, लेकिन पत्रस दरवाजे पर बाहर खड़ा रहा। बस वो दूसरा शागिर्द जो सरदार काहिन का जान पहचान था बाहर निकला और दरबान औरत से कहकर पत्रस को अंदर ले गया। उस लौंडी ने जो दरबान थी पत्रस से कहा,
क्या तू भी इस शख्स के शागिर्दों में से है?
उसने कहा,
मैं नहीं हूँ।
नौकर और पियादे जाड़े के सबब से कोयले दहका कर खड़े ताप रहे थे और पत्रस भी उनके साथ खड़ा ताप रहा था। फिर सरदार काहिन ने यीशु से उसके शागिर्दों और उसकी तालीम की बाबत पूछा। यीशु ने उसे जवाब दिया,
मैंने दुनिया से अलानिया बातें की हैं, मैंने हमेशा इबादत खानों और हैकल में जहां सब यहूदी जमा होते हैं तालीम दी और पोशीदा कुछ नहीं कहा, तू मुझसे क्यों पूछता है? सुनने वालों से पूछ कि मैंने उनसे क्या कहा, देख उनको मालूम है कि मैंने क्या क्या कहा।
जब उसने ये कहा तो प्यादों में से एक शख्स ने जो पास खड़ा था यीशु के तमाचा मारकर कहा,
तू सरदार काहिन को ऐसा जवाब देता है?
यीशु ने उसे जवाब दिया,
अगर मैंने बुरा कहा तो उस बुराई पर गवाही दे, और अगर अच्छा कहा तो मुझे मारता क्यों है?
बस हन्ना ने उसे बंधा हुआ सरदार काहिन काइफा के पास भेज दिया। शमाउन पत्रस खड़ा ताप रहा था। बस उन्होंने उससे कहा,
क्या तू भी उसके शागिर्दों में से है?
उसने इनकार करके कहा,
मैं नहीं हूँ।
जिस शख्स का पत्रस ने कान उड़ा दिया था उसके एक रिश्तेदार ने जो सरदार काहिन का नौकर था कहा,
क्या मैंने तुझे उसके साथ बाग में नहीं देखा?
पत्रस ने फिर इनकार किया और फौरन मुर्ग ने बांग दी। फिर वो यीशु को काइफा के पास से किले को ले गए और सुबह का वक्त था और वो खुद किले में न गए ताकि नापाक न हो बल्कि फसा खा सकें। बस पिलातुस ने उनके पास बाहर आकर कहा,
तुम इस आदमी पर क्या इल्जाम लगाते हो?
उन्होंने जवाब में उससे कहा,
अगर ये बदकार न होता तो हम इसे तेरे हवाले न करते।
पिलातुस ने उनसे कहा,
इसे ले जाकर तुम ही अपनी शरीयत के मुआफिक इसका फैसला करो।
यहूदियों ने उससे कहा,
हमें रवा नहीं कि किसी को जान से मारे।
ये इसलिए हुआ कि यीशु की वो बात पूरी हो जो उसने अपनी मौत के तरीक की तरफ इशारा करके कही थी। बस पिलातुस किले में फिर दाखिल हुआ और यीशु को बुलाकर उससे कहा,
क्या तू यहूदियों का बादशाह है?
यीशु ने जवाब दिया,
तू ये बात आप ही कहता है या औरों ने मेरे हक में तुझसे कही?
पिलातुस ने जवाब दिया,
क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही कौम और सरदार काहिनों ने तुझको मेरे हवाले किया, तूने क्या किया है?
यीशु ने जवाब दिया,
मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं, अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे खादिम लड़ते ताकि मैं यहूदियों के हवाले न किया जाता, मगर अब मेरी बादशाही यहाँ की नहीं।
पीलातुस ने उससे कहा,
बस क्या तू बादशाह है?
यीशु ने जवाब दिया,
तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूँ। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया हूँ कि हक पर गवाही दूँ। जो कोई हक से है मेरी आवाज सुनता है।
पीलातुस ने उससे कहा,
हक क्या है?
ये कहकर वो यहूदियों के पास फिर बाहर गया और उनसे कहा,
मैं उसका कुछ जुर्म नहीं पाता, मगर तुम्हारा दस्तूर है कि मैं फंसा पर तुम्हारी खातिर एक आदमी छोड़ दिया करता हूँ। बस क्या तुमको मंजूर है कि मैं तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूँ?
उन्होंने चिल्लाकर फिर कहा,
इसको नहीं लेकिन बरब्बा को।
और बरब्बा एक डाकू था। यूहन्ना की इंजील बाब 19। इस पर पिलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए और सिपाहियों ने कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे अर्गवानी पोशाक पहनाई और उसके पास आकर कहने लगे,
ये यहूदी का बादशाह आलम।
और उसके तमाचे भी मारे। पिलातुस ने फिर बाहर जाकर लोगों से कहा,
देखो मैं उसे तुम्हारे पास बाहर ले आता हूँ ताकि तुम जानो कि मैं उसका कुछ जुर्म नहीं पाता।
यीशु कांटों का ताज रखे और अर्गवानी पोशाक पहने बाहर आया और पिलातुस ने उनसे कहा,
देखो ये आदमी।
जब सरदार काहिन और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, पिलातुस ने उनसे कहा,
तुम ही इसे ले जाओ और सलीब दो, क्योंकि मैं इसका कुछ जुर्म नहीं पाता।
यहूदियों ने उसे जवाब दिया,
हम अहले शरीयत हैं और शरीयत के मुआफिक वो कत्ल के लायक है, क्योंकि उसने अपने आप को खुदा का बेटा बनाया।
जब पिलातुस ने यह बात सुनी तो और भी डरा और फिर किले में जाकर यीशु से कहा,
तू कहाँ का है?
मगर यीशु ने उसे जवाब न दिया। बस पिलातुस ने उससे कहा,
तू मुझसे बोलता नहीं? क्या तू नहीं जानता कि मुझे तुझको छोड़ देने का भी इख्तियार है और मसलूब करने का भी इख्तियार है?
यीशु ने उसे जवाब दिया,
अगर तुझे ऊपर से न दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ इख्तियार न होता। इस सबब से जिसने मुझे तेरे हवाले किया उसका गुनाह ज्यादा है।
इस पर पिलातुस उसे छोड़ देने में कोशिश करने लगा, मगर यहूदियों ने चिल्लाकर कहा,
अगर तू इसको छोड़े देता है तो कैसर का खैर ख्वाह नहीं। जो कोई अपने आप को बादशाह बनाता है वो कैसर का मुखालिफ है।
पिलातुस ये बातें सुनकर यीशु को बाहर लाया और उस जगह जो चबूतरा और इब्रानी में गबत्ता कहलाती है तख्त अदालत पर बैठा। ये फसे की तैयारी का दिन और छठे घंटे के करीब था। फिर उसने यहूदियों से कहा,
देखो ये है तुम्हारा बादशाह।
बस वो चिल्लाए,
ले जा, ले जा, उसे सलीब दे।
पिलातुस ने उनसे कहा,
क्या मैं तुम्हारे बादशाह को सलीब दूं?
सरदार काहिनों ने जवाब दिया,
कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं।
इस पर उसने उसको उनके हवाले किया ताकि मसलूब किया जाए। बस वो यीशु को ले गए और वो अपनी सलीब आप उठाए हुए उस जगह तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाती है, जिसका तर्जुमा इब्रानी में गुलगुता है। वहाँ उन्होंने उसको और उसके साथ और दो शख्सों को सलीब दी, एक को इधर एक को उधर, और यीशु को बीच में। और पिलातुस ने एक किताबा लिखकर सलीब पर लगा दिया। उसमें लिखा था, यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। उस किताबे को बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, इसलिए कि वो मकाम जहां यीशु मसलूब हुआ शहर के नजदीक था और वो इब्रानी लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। बस यहूदियों के सरदार काहिनों ने पिलातुस से कहा,
यहूदियों का बादशाह ना लिख, बल्कि ये
कि उसने कहा मैं यहूदियों का बादशाह हूँ।
पिलातुस ने जवाब दिया,
मैंने जो लिख दिया वो लिख दिया।
जब सिपाही यीशु को मसलूब कर चुके तो उसके कपड़े लेकर चार हिस्से किए, हर सिपाही के लिए एक हिस्सा, और उसका कुर्ता भी लिया। ये कुर्ता बिन सिला सरासर बुना हुआ था, इसलिए उन्होंने आपस में कहा,
इसे फाड़े नहीं बल्कि इस पर कुरा डालें, ताकि मालूम हो कि किसका निकलता है।
ये इसलिए हुआ कि वो नविष्टा पूरा हो जो कहता है,
उन्होंने मेरे कपड़े बांट लिए और मेरी पोशाक पर कुरा डाला।
चुनाचे सिपाहियों ने ऐसा ही किया और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम किलोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे वो बहुत मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा,
ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है।
फिर शागिर्द से कहा,
देख तेरी माँ ये है।
और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविष्टा पूरा हो, तो कहा,
मैं प्यासा हूँ।
वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, बस उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा,
तमाम हुआ,
और सर झुकाकर जान दे दी। बस चूंकि तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से दरखास्त की कि उनके टांगे तोड़ दी जाएं और लाशें उतार ली जाएं, ताकि सब्त के दिन सलीब पर न रहें, क्योंकि वो सब्त एक खास दिन था। बस सिपाहियों ने आकर पहले और दूसरे शख्स की टांगे तोड़ी जो उसके साथ मसलूब हुए थे। लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है, तो उसकी टांगे न तोड़ी, मगर उनमें से एक सिपाही ने भाले से उसकी पसली छेद दी और फील फौर उससे खून और पानी बह निकला। जिसने ये देखा है उसी ने गवाही दी है, और उसकी गवाही सच्ची है, और वो जानता है कि सच कहता है, ताकि तुम भी ईमान लाओ। ये बातें इसलिए हुई कि ये नविष्टा पूरा हो,
उसकी कोई हड्डी ना तोड़ी जाए।
फिर एक और नविष्टा कहता है,
जिसे उन्होंने छेदा उस पर नजर करेंगे।
इन बातों के बाद अरिमतिया के रहने वाले यूसुफ ने, जो यीशु का शागिर्द था लेकिन यहूदियों के डर से खुफिया तौर पर, पिलातुस से इजाजत चाही कि यीशु की लाश ले जाए। पिलातुस ने इजाजत दी, बस वो आकर उसकी लाश ले गया। और निकोदिमुस भी आया, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, और 50 सेर के करीब मुर और ऊद मिला हुआ लाया। बस उन्होंने यीशु की लाश लेकर उसे सूती कपड़े में खुशबूदार चीजों के साथ कफनाया, जिस तरह के यहूदियों में दफन करने का दस्तूर है। और जिस जगह वो मसलूब हुआ वहाँ एक बाग था, और उस बाग में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई न रखा गया था। बस उन्होंने यहूदियों की तैयारी के दिन के 22 यीशु को वहीं रख दिया, क्योंकि ये कब्र नजदीक थी। यूहन्ना की इंजील बाब 20। हफ्ते के पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के कि अभी अंधेरा ही था, कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। बस वो शमाऊन पतरस और उसके दूसरे शागिर्द के पास, जिसे यीशु अजीज रखता था, दौड़ी हुई गई और उनसे कहा,
खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए और हमें मालूम नहीं कि उसे कहाँ रख दिया।
बस पतरस और वो दूसरा शागिर्द نکل کر قبر کی طرف چلے اور دونوں ساتھ ساتھ دوڑے، مگر دوسرا شاگرد پترس سے آگے بڑھ کر قبر پر پہلے پہنچا۔ اس نے جھک کر نظر کی اور سوتی کپڑے پڑے ہوئے دیکھے، مگر اندر نہ گیا۔ شمعون پترس اس کے پیچھے پیچھے پہنچا اور اس نے قبر کے اندر جا کر دیکھا کہ سوتی کپڑے پڑے ہیں، اور وہ رومال جو اس کے سر سے بندھا ہوا تھا سوتی کپڑوں کے ساتھ نہیں بلکہ لپٹا ہوا ایک جگہ الگ پڑا ہے۔ اس پر دوسرا شاگرد بھی جو پہلے قبر پر آیا تھا اندر گیا اور اس نے دیکھ کر یقین کیا، کیونکہ وہ اب تک اس نوشتے کو نہ جانتے تھے جس کے مطابق اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور تھا۔ بس یہ شاگرد اپنے گھر کو واپس گئے، لیکن مریم باہر قبر کے پاس کھڑی روتی رہی، اور جب روتے روتے قبر کی طرف جھک کر اندر نظر کی تو دو فرشتوں کو سفید پوشاک پہنے ہوئے، ایک کو سرہانے اور دوسرے کو پینتانے، بیٹھے دیکھا جہاں یسوع کی لاش پڑی تھی۔ انہوں نے اس سے کہا،
اے عورت تو کیوں روتی ہے؟
اس نے ان سے کہا،
اس لیے کہ میرے خداوند کو اٹھا لے گئے ہیں اور معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھا ہے۔
یہ کہہ کر وہ پیچھے پھری اور یسوع کو کھڑے دیکھا اور نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ یسوع نے اس سے کہا،
اے عورت تو کیوں روتی ہے؟ کس کو ڈھونڈتی ہے؟
اس نے باغوان سمجھ کر اس سے کہا،
میاں اگر تو نے اس کو یہاں سے اٹھایا ہو تو مجھے بتا دے کہ اسے کہاں رکھا ہے تاکہ میں اسے لے جاؤں۔
یسوع نے اس سے کہا،
مریم۔
اس نے مڑ کر اس سے عبرانی زبان میں کہا،
ربونی،
یعنی اے استاد۔ یسوع نے اس سے کہا،
مجھے نہ چھو، کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔
مریم مگدلینی نے آ کر شاگردوں کو خبر دی،
میں نے خداوند کو دیکھا اور اس نے مجھ سے یہ باتیں کہیں۔
پھر اسی دن جو ہفتے کا پہلا دن تھا، شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا،
تمہاری سلامتی ہو،
اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ بس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ یسوع نے پھر ان سے کہا،
تمہاری سلامتی ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔
اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا،
روح القدس لو، جن کے گناہ تم بخشو ان کے گناہ بخشے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔
مگر ان بارہ میں سے ایک شخص یعنی توما، جسے توام کہتے ہیں، یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ بس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے،
ہم نے خداوند کو دیکھا ہے۔
مگر اس نے ان سے کہا،
جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔
آٹھ روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑے ہو کر کہا،
تمہاری سلامتی ہو۔
پھر اس نے توما سے کہا،
اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔
توما نے جواب میں اس سے کہا،
آئے میرے خداون، آئے میرے خدا۔
یسوع نے اس سے کہا،
تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔
اور یسوع نے اور بہت سے معجزے شاگردوں کے سامنے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے ہیں کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ यूहन्ना की इंजील बाब 21। इन बातों के बाद यीशु ने फिर अपने आप को तिब्रियास की झील के किनारे शागिर्दों पर जाहिर किया और इस तरह जाहिर किया। शमाउन पतरस और तोमा जो तोआम कहलाता है और नतनियल जो कानाए गलील का था और जब्दी के बेटे और उसके शागिर्दों में से दो और शख्स जमा थे। शमाउन पतरस ने उनसे कहा,
मैं मछली के शिकार को जाता हूँ।
उन्होंने उससे कहा,
हम भी तेरे साथ चलते हैं।
वो निकलकर कश्ती पर सवार हुए मगर उस रात कुछ न पकड़ा। और सुबह होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ मगर शागिर्दों ने न पहचाना कि ये यीशु है। बस यीशु ने उनसे कहा,
बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है?
उन्होंने जवाब दिया,
नहीं।
उसने उनसे कहा,
कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे।
बस उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत से फिर खींच ना सके। इसलिए उस शागिर्द ने जिससे यीशु मोहब्बत रखता था पतरस से कहा,
ये तो खुदावंद है।
बस शमाउन पतरस ने ये सुनकर कि खुदावंद है, कुर्ता कमर से बांधा क्योंकि नंगा था और झील में कूद पड़ा। और बाकी शागिर्द छोटी कश्ती पर सवार मछलियों का जाल खींचते हुए आए क्योंकि वो किनारे से कुछ दूर न थे बल्कि तखमीनन 200 हाथ का फासिला था। जिस वक्त किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयलों की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा,
जो मछलियाँ तुमने अभी पकड़ी हैं, उनमें से कुछ लाओ।
शमाउन पतरस ने चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा मगर बावजूद मछलियों की कसरत के जाल न फटा। यीशु ने उनसे कहा,
आओ खाना खा लो।
और शागिर्दों में से किसी को जुर्रत न हुई कि उससे पूछता कि तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, इसी तरह मछली भी दी। यीशु मुर्दों में से जूटने के बाद यों तीसरी बार शागिर्दों पर जाहिर हुआ। और जब खाना खा चुके तो यीशु ने शमाउन पतरस से कहा,
ऐ शमाउन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है?
उसने उससे कहा,
हाँ खुदावन, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ।
उसने उससे कहा,
तू मेरे बर्रे चरा।
उसने दोबारा उससे फिर कहा,
ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है?
उसने कहा,
हाँ खुदावन, तू तो जानता ही है कि मैं तुझको अजीज रखता हूँ।
उसने उससे कहा,
तू मेरी भेड़ों की गल्लेबानी कर।
उसने तीसरी बार उससे कहा,
ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज रखता है?
क्योंकि उसने तीसरी बार उससे कहा, क्या तू मुझे अजीज रखता है, इस सबब से पतरस ने दिलगीर होकर उससे कहा,
ऐ खुदावन, तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ।
यीशु ने उससे कहा,
तू मेरी भेड़ें चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तू जवान था तो आप ही अपनी कमर बांधता था और जहाँ चाहता था फिरता था, मगर जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा शख्स तेरी कमर बांधेगा और जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा।
उसने इन बातों से इशारा कर दिया कि वो किस तरह की मौत से खुदा का जलाल जाहिर करेगा और ये कहकर उससे कहा,
मेरे पीछे हो ले।
पतरस ने मुड़कर उस शागिर्द को पीछे आते देखा जिससे यीशु मोहब्बत रखता था और जिसने शाम के खाने के वक्त उसके सीने का सहारा लेकर पूछा था, ऐ खुदावंद तेरा पकड़वाने वाला कौन है? पतरस ने उसे देखकर यीशु से कहा,
ऐ खुदावंद इसका क्या हाल होगा?
यीशु ने उससे कहा,
अगर मैं चाहूँ कि ये मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझको क्या, तू मेरे पीछे हो ले।
बस भाइयों में ये बात मशहूर हो गई कि वो शागिर्द ना मरेगा, लेकिन यीशु ने उससे ये नहीं कहा था कि ये ना मरेगा बल्कि ये کہ اگر میں چاہوں کہ یہ میرے آنے تک ٹھہرا رہے تو تجھ کو کیا؟ یہ وہی شاگرد ہے جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے اور جس نے ان کو لکھا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کی گواہی سچی ہے۔ اور بھی بہت سے کام ہیں جو یسوع نے کیے، اگر وہ جدا جدا لکھے جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کتابیں لکھی جاتی ان کے لیے دنیا میں گنجائش نہ ہوتی۔